जय राधा माधव कुंज बिहारी। युद्ध मत करो, गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। गोपी जनवल्लभ गिरिवर धारी। यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो सब लोग बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम नितय गौर हरिबोल 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 हिताय गौरा हरिबोल 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 श्रील प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तो आज के इस बुधवार के 28 नवंबर के संध्या के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हरे कृष्णा। शाम देश में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से 8वें अध्याय से 26वां श्लोक पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है कुंती माता की प्रार्थना। जन्म ऐश्वर्य श्रुतिश्रीभिर् एधमान मदह पुमान नैवार्हति अभिधातुं वै त्वाम अकिंचन गोचरम्। हे भगवान, आपको जीव बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकता है, लेकिन केवल वो लोग आपको प्राप्त कर सकते हैं जो भौतिक दृष्टि से गरीब हो चुके हैं। जो व्यक्ति भौतिक दुनिया में प्रगति करने के रास्ते पर है, आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, भौतिक दुनिया में प्रगति करने के रास्ते पर है, जो अपने आप को भौतिक दृष्टि से ऊंचा बनाना चाहता है, किस तरह से, अच्छे कुल में जन्म लेने से या बहुत ऐश्वर्य प्राप्त करने से, बहुत विद्या एजुकेशन प्राप्त करने से या बहुत सुंदरता प्राप्त करने से। हाँ, चार चीज़ें बताइए। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री। जन्म यानी बहुत अच्छे कुल में जन्म लेना, ऐश्वर्य यानी बहुत सारा संपत्ति, और श्रुति यानी बहुत सारी विद्या एजुकेशन, और श्री यानी शरीर की सुंदरता सौंदर्य। जिनके पास ये चार चीजें हैं, या चार में से एक है, या दो है, या तीन है, या चारों हैं, वो हृदय से आपको प्राप्त नहीं कर सकते। इंग्लिश में लिखा है दे कैनॉट अप्रोच यू विथ सिंसियर फीलिंग, प्रामाणिकता से, हृदय की भावना से आपको वो प्राप्त नहीं कर सकते। भौतिक दुनिया में आगे बढ़ना मतलब प्रगति करना, इसका मतलब क्या होता है कि आपका जन्म बड़े ऐश्वर्यपूर्ण घर में होना चाहिए, बड़े परिवार में, चीफ मिनिस्टर के घर में, या पुलिस कमिश्नर के घर पे, या कोई पीएचडी डॉक्टर के घर पे, या कोई ऐसा बहुत बड़ा लिखा आदमी के घर पे, या कोई जन्म से ब्राह्मण कुल में, या कोई साउथ इंडियन ब्राह्मण हो, या कोई गुजराती ब्राह्मण हो, या कोई महाराष्ट्रियन ब्राह्मण हो, या कोई पंजाबी कश्मीरी पंडित हो, अच्छे कुल का जन्म। और दूसरा है, आजकल के दुनिया में जन्म को कौन पूछता है, जिसके पास पैसा है उसी को रिस्पेक्ट देते हैं, वो किसका बेटा है, वो धनवान आदमी का बेटा है। तो दूसरी बात है पोजेसिंग ग्रेट वेल्थ, तीसरी बात है कि वो दिखने में सुंदर नहीं है, उसका कुल भी अच्छा नहीं, लेकिन 10 डिग्री है उसके पास हर विषय में उसने। हमारे पास कॉलेज में एक लड़का, जब मैं थे कॉलेज में तभी, एक महाराष्ट्र के मिनिस्टर थे, उसके पास 16 डिग्री थी और 16 विषय में उसने पीएचडी किया था, और वो हेल्थ मिनिस्टर था और मेडिकल डॉक्टर भी था, एमडी मेडिसिन डॉक्टर था, लेकिन एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट था वो, मैनेजमेंट में गोल्ड मेडलिस्ट, इकोनॉमिक्स में गोल्ड मेडलिस्ट, लैंग्वेज में भी संस्कृत में और मराठी में गोल्ड मेडलिस्ट, और महाराष्ट्र का हेल्थ मिनिस्टर था वो, टू हाईली एजुकेटेड। और जिसके पास में शरीर का बहुत आकर्षक सुंदरता है, ऐसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। आज के दुनिया में व्याख्या क्या है कि यू आर एडवांस्ड, मतलब आपके पास या तो अच्छा कुल में जन्म हो गया है, या आपके पास बहुत धन दौलत है, या आपके पास बहुत ही विद्या है, या बहुत सुंदरता है शरीर की। जितने भी लोग इस दुनिया में रहते हैं वो सब ये चार चीजों को प्राप्त करने के लिए पागल जैसे काम करते हैं, और इसी को मटेरियल सिविलाइजेशन में बहुत मान देते हैं। बट द रिजल्ट इज दैट पोजेसिंग ऑल दिस मटेरियल एसेट्स वन बिकम्स आर्टिफिशियली पफ्ड अप एंड इंटॉक्सिकेटेड बाय सच टेम्पररी पोजेशंस। इन क्षणिक या तो टेम्पररी चीजों को प्राप्त करके मनुष्य का झूठ मूठ का जो मिथ्या अहंकार है वो बहुत बढ़ जाता है, ही गेट्स पफ्ड अप। कंसिक्वेंटली सच मटीरियली पफ्ड अप पर्संस आर इनकेपेबल ऑफ अटरिंग द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। और जिन लोगों को इन चार चीजों की वजह से गर्व होता है वो भगवान का नाम पुकार नहीं सकते हैं, उनके हृदय से, उनके जिह्वा से, उनके मन से, भावना से भगवान के लिए आकर्षण पैदा नहीं हो सकता है। ओ गोविंदा ओ कृष्णा, जिस तरह से द्रौपदी ने पुकारा था उस तरह वो नहीं पुकार सकते हैं। शास्त्र में लिखा है कि एक बार भगवान का नाम जो पुकारते हैं तो उसके इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितना वो कर नहीं सकता है, पूरी कैपेसिटी के साथ जितना पाप वो कर सकता है उससे भी ज्यादा पाप जो है वो भगवान के नाम लेने से एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। जस्ट सी, सच इज द पावर ऑफ अटरिंग द होली नेम, ऐसे भगवान के नाम की जप में शक्ति है। ये कोई मत समझना कि ऐसे ही बहकाया जा रहा है आपको, अतिशयोक्ति, हाँ एग्जैगरेशन नहीं है ये। एक्चुअली द लॉर्ड्स होली नेम इज सो पावरफुल, लेकिन वो जो भगवान के नाम के पुकारने की जो भावना है ना वो अलग चीज है। जब तक वो हृदय से नहीं पुकारता है तब तक उसका लाभ नहीं होता है। अ मटेरियली पफ्ड अप पर्सन में अटर द होली नेम ऑफ द लॉर्ड ओकेजनली बट इज इनकेपेबल ऑफ अटरिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड इन क्वालिटी। वो पुकारेगा, कभी कभी शादी होगा तो हाथ जोड़ेगा, मत्था टेकेगा, लेकिन हृदय से भगवान को नहीं पुकार सकता वो, क्योंकि इतना गर्व है उसके लिए, उसके मन में इतना गर्व है, उसके पास में क्या नहीं है, जो चाहिए आप नाम लो सब उसके पास में है, तो भगवान के लिए क्यों जाएगा वो, भगवान के पास क्यों जाएगा, उसको लगेगा मैं ही करता हूँ, मैंने ही मेहनत किया है, मेरा सारा बिजनेस एम्पायर सारा मेरा है, वाई आई नीड गॉड, आई डोंट नीड गॉड। देयरफॉर द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ मटीरियल एडवांसमेंट, नेमली जो चार मेन तत्व है ना जिसको मटीरियल एडवांसमेंट के नाम से जानते हैं, नंबर वन अच्छे कुल में जन्म लेना, नंबर टू बहुत सारा धन होना, नंबर तीन बहुत सारा विद्या प्राप्त करना, और नंबर चार बहुत सारा सौंदर्य शरीर का होना, शरीर बहुत मजबूत अट्रैक्टिव हैंडसम होना। इन चार चीजों को कुंती देवी की तरह, कुंती देवी कह रही है, उनके तो उनका मत ऐसा है कुंती देवी का कि भगवान के विषय में प्रगति करने के लिए ये बहुत बड़ी बाधाएं हैं, बिग हिंड्रेंसेस, भगवान के रास्ते में बहुत बड़े अवरोध हैं, अवरोध। द मटीरियल कवरिंग ऑफ द प्योर सोल इज एन एक्सटर्नल फीचर, सच एज फीवर इज एन एक्सटर्नल फीचर ऑफ द अनहेल्दी बॉडी। जैसे शरीर को बुखार आता है ना, तो वो शरीर का रोग है, मन का रोग नहीं है। उस तरह से ये जो भौतिक एडवांसमेंट है वो भी एक बाह्य आवरण है, टेम्पररी भूल भुलैया है, मोह है सब। द जनरल प्रोसेस इज टू डिक्रीज द डिग्री ऑफ फीवर एंड नॉट टू एग्रेवेट बाय मॉल ट्रीटमेंट। गलत दवा देने से हम लोग, उद्देश्य क्या होता है ट्रीटमेंट का, बुखार कम होना चाहिए, बढ़ाने का काम नहीं करते। Sometimes it is seen that spirituality advanced persons, spiritually advanced person become materially impoverished. कभी कभी हम देखते हैं भगवान के भक्ति में आने के बाद में material progress नहीं होता है। लोग बोलते हैं देखो भक्ति किया ना, ये देखो loss हो गया, business में share market में fall हो गया, सब property seize हो गया, हाँ you become bankrupt, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको, दीवाल खोर, दीवाला निकल गया उसका। तो क्या हमने देखो भक्ति किया ना तो ऐसा हो गया, भक्ति नहीं करता तो अच्छा था, तब तक सब ठीक था। ऑन द अदर हैंड सच इम्पॉवरिशमेंट इज गुड साइन एज मच एज फॉलिंग टेम्परेचर इज गुड साइन। इस तरह से बुखार कम होता है तो वो एक अच्छा सिम्टम है, उसी तरह से अगर भौतिक दुनिया का ऐश्वर्य अगर कम होता है तो वह अच्छा सिम्टम है। The principle of life should be to decrease the degree of material intoxication which leads one to be more and more illusioned about the aim of life. हमारे जीवन का तत्व ऐसा होना चाहिए कि ये जो intoxication है ना, नशा, उसको मद कहते हैं, मद, मद यानी intoxication, मतलब इतना नशा है उसको अपने पैसे का, अपने पावर का, अपने पोजिशन का, कि वो नशा जो है ना वो बहुत ही बड़ा रोग है, और वो अधिक 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 उस जीव को मोह में डाल देता है, गहराई में मोह में घुसा देता है उसको, डीपली इन इल्यूजन। ग्रॉसली इल्यूजन पर्सन्स आर क्वाइट अनफिट टू एंट्रेंस टू फॉर द एंट्रेंस ऑफ किंगडम ऑफ गॉड। तो जो लोग इस तरह से धन के मद में घूमते रहते हैं वो भगवान के पास कभी पहुंच नहीं सकते। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयम् ददाति स्वपदांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिस प्रकार से आप लोगों ने भगवान को अभी पुकारा उससे मुझे ये विश्वास हुआ कि आप में से कोई मटेरियली इंटॉक्सिकेटेड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भौतिक दुनिया में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा हुआ है तो भगवान का नाम नहीं ले सकता। सबसे पहले आजकल के दुनिया में जिसको कीमत देते हैं लोग, इसको वैल्यू देते हैं, इसको बहुत बड़ा मानते हैं, वो है पैसा। फिर वो कैरेक्टर, उसका थर्ड क्लास कैरेक्टर भी हो, वो शूद्र कुल में चामार के घर में जन्मा हो गया हो, या और भी दिखने में ख़राब हो, काला कलोटा हो, नाक टेढ़ा हो उसका, बहुत मोटा हो, फिर भी उसको लोग बहुत सलाम करते हैं। ऐसा हो गया कलयुग के अंदर। पुराने ज़माने में विद्या को मान देते थे लोग, somebody educated, वो भी स्पिरिचुअली एजुकेटेड, उपनिषद में, वेद में, पुराण में, तो लोग उसको दंडवत करते थे, इतना ज्ञानी ब्राह्मण है। आजकल बहुत एजुकेशन भी होगा तो इतना मूल्य देते नहीं है, पैसा होना चाहिए बस। अंगूठा छाप भी होगा ना, करोड़पति होगा तो सब सलाम सलाम, सेठ 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 बोलेंगे उसको। ये कलयुग का एक बहुत ही खराब लक्षण है। योग्यता ना होते हुए भी अगर पैसा खाली होगा तो उसको लोग सलाम करते हैं। और पैसा होने से ना, पैसे का कैसा गुण है, अभी आपको एक छोटी सी कथा बताता हूँ, छोटे से बताता हूँ। परीक्षित महाराज ने जब कलयुग को बताया ना, जाओ चले जाओ यहाँ से, तो मैं काट दूंगा आपका सर, तो वो शरण आ गया उनको। वो बोला मैं भी आपकी प्रजा हूँ, मुझे भी जगह दो, मैं भी आपका नागरिक हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आप राजा हो, तो बोले जाओ जहाँ मांसाहार होता है, जहाँ जानवरों की हत्या होती है बिना कारण, मतलब हिंसा होती है, वहाँ चले जाओ, जहाँ पर बिना शादी के आदमी संबंध कर रहा है औरत आदमी, वहाँ व्यभिचार होता है, वहाँ चले जाओ, जहाँ पर लोग नशा कर रहे हैं वहाँ चले जाओ, और जहाँ पर लोग जुआ खेल रहे हैं, प्रॉपर्टी का उड़ा रहे हैं उसको, वहाँ चले जाओ। तो बेचारा पूरा दुनिया घूम के आया, लेकिन उसको परीक्षित महाराज के टाइम पे ऐसा कोई जगह नहीं मिला जहाँ पर व्यभिचार चल रहा हो, नशा चल रही हो, जुआ खेला जा रहा हो, या नशा कर रहा है कोई। आप विश्वास करेंगे उस बात को आज के तारीख में? कोई मुंडने की जरूरत नहीं, सामने देखेगा तो सब जगह पर चल रहा है आजकल। एनी वेयर यू सी, चारों दिशा में यही चल रहा है, पास में चल रहा है, दूर भी चल रहा है, दूर दूर तक भी यही चल रहा है। लेकिन उस समय पे उसको जगह नहीं मिला तो वापस लौट के आया हो, बोला महाराज आपने जो चार एड्रेस दिया था उधर कुछ नहीं है, मेरा कोई एंट्रेंस नहीं है उधर, कोई जगह ही नहीं ऐसी मेरे लिए। तो परीक्षित महाराज ने बोला कि जहाँ पर जरूरत से अधिक पैसा है वहाँ जाओ, वहाँ आपको स्थान है। तो तुरंत उसको बहुत जगह मिल गया, जरूरत से अधिक पैसा। तो हमारे लिए मैसेज क्या है उसके अंदर, कि जहाँ पर जरूरत से अधिक पैसा स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ पर कली निवास करता है। और कली निवास करने का मतलब क्या होता है, कली जहाँ रहता है उसका पर उस जगह पर झगड़े होते रहते हैं, और उस जगह पर दम्भ है। दम्भ का मतलब क्या है, फॉल्स प्रेस्टीज, मतलब आप वो नहीं हो लेकिन आप दिखा रहे हो कि मैं हूँ। फॉर एग्जांपल आप सत्यवादी नहीं हो लेकिन आप दुनिया को बताओ कि मैं कितना सत्यवादी हूँ। आप दानी नहीं हो लेकिन दुनिया को दिखाओगे मैं कितना दान करता हूँ, मैं कितना सज्जन हूँ। एकदम दुष्ट व्यक्ति होगा तो भी बोलेगा मैं कितना सज्जन हूँ। जो नहीं है वो दुनिया को दिखाएगा, अच्छा नहीं है तो भी अच्छा दिखाएगा। झूठ बोलने वाला आदमी नंबर वन है लेकिन कैसा मैं सत्यवादी हूँ वो दिखाएगा। एक नंबर का कंजूस होगा लेकिन कितना दानी है ऐसा दिखाएगा, एडवर्टाइजमेंट बहुत करेगा वो। उसको दम्भ कहते हैं, फॉल्स प्रेस्टीज। दम्भ को और क्या कहते हैं, ढोंग कहते हैं, ढोंग, और एक नाम उसका ढोंग है। तो पैसा उस होने पर उसके जगह पर कली आएगा, और कली होने पर ये सब होते रहेगा। तो पैसे का ये गुण है। आप देखिए बचपन में कोई आदमी गरीब रहता है ना तो बहुत फ्रेंडली रहता है, दोस्तों को घर पे बुलाएगा, खाना खिलाएगा, खाना खाने के लिए आग्रह करेगा, खाओ खाओ खा के जाओ। पैसा आएगा तो सबको दूर करेगा, सब फ्रेंडशिप टूट जाएगी उसकी, सबको दूर रखेगा, किसी से प्रेम नहीं करेगा वो। उसको डाउट रहता है मन में, संशय रहता है कि मैं पैसे वाला बन गया हूँ, ये आदमी मेरे पास आया तो मेरे से पैसा उसकी इच्छा होगी, इसलिए आया होगा। ये आदमी भी कुछ लेने के लिए आया होगा, इसलिए सबको दूर रखता है, वो किसी से प्रेम नहीं करता है। पहला दिलदार होता है बहुत, और पैसा आने पर दिलदारी ख़त्म हो जाती है उसकी, किसी को खाने पर नहीं बुलाता है। गरीब था तो लोन लेके खाना खिलाता था, पर पैसा होने पर किसी को खाने पर नहीं बुलाता है वो। तो पैसा आपको क्या लगता है, आप मुझे तो ऑनेस्टली बताइए, पैसा आने पर लोग जुड़ जाते हैं कि लोग दूर चले जाते हैं? लोग जमा बहुत होते हैं आपके आसपास, जमा बहुत गोल गोल घूमने वाले लोग होते हैं, लेकिन आप पर प्रेम नहीं करते, वो आपके पैसे पर प्रेम करते हैं। जिस दिन आपका पैसा डूब गया, समझो आप अरेस्ट हो गए पैसे के चक्कर में, तो सब छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन दिल से कोई जुड़ता नहीं है पैसे की वजह से, पैसा उलट जो दिल से जुड़े हुए हैं उसको तोड़ देता है। नहीं तो भारत में जो सबसे धनी परिवार है उनके पास में इतना पैसा है, इतना पैसा है, उसमें से एक ऐसा क्या ना ऐसा, तो जितना गिरेगा ना उतने हम सबका परिवार चल सकता है जिंदगी भर। ऐसे मजाक में भी ऐसा टिचकी मारा ना उन्होंने, तो जितना पैसा गिरेगा ना उतने में हमारा सारा लोगों का परिवार चल सकता है, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन फिर भी कोर्ट में लड़ते हैं प्रॉपर्टी के लिए। हम लोग बोलेंगे 1 करोड़ भी देगा ना उस पे से तो मैं रिटायर हो जाऊंगा, मैं अभी VRS का एप्लीकेशन करूंगा और घर में बैठ के आराम से सब्जी पाला खाऊंगा, आराम से रहूंगा, कोई काम करने की जरूरत नहीं, इतना पैसा है उनके पास। लेकिन फिर भी इतना होने के बाद भी वो दिन में 15 घंटा काम करते हैं और वर्ल्ड में सबसे टॉप जाने का प्रयास कर रहे हैं। कितना जगह पे सो सकते हैं आप बताओ मुझे, आप एक बार सोएंगे रात को कितना जगह नापोगे आप? एनी आइडिया, रफ आइडिया? 6x1, 2, 3 एट द मोस्ट, ऐसा सोएगा तो भी दोनों हाथ फैला के 6x4 है ना। एक बार पे कितनी जगह पे आप रह सकते हो एक बार में? एक ही जगह पे सिंपल, एकदम सिंपल। आपके पास हर सिटी में एक बंगला होगा शायद, लेकिन एक टाइम पे आप एक ही जगह रह सकते हो। आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास एक गल्फ कंट्री में राजा है, उसके पास हर रोज 51 टाइप का खाना बनता है, ब्रेकफास्ट के, लंच के लिए, डिनर के लिए, और कहते हैं कभी कभी वो एक पपीता खा के चला जाता है। इमेजिन 51 टाइप्स का, 51 कंट्रीज का अलग अलग खाना ब्रेकफास्ट किंग के लिए बनता है, लेकिन वो कभी कभी आधा पपीता खा के चला जाता है। इतना ऐश्वर्य है लोगों के पास, लेकिन सुख है क्या उसकी वजह से? नहीं है। दैट इज द होल पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि धन दौलत ज्यादा आने से आदमी को खुशी नहीं मिलती है, उसका असुरक्षित भावना होती है ना, इनसिक्योरिटी फीलिंग बढ़ जाती है, उसकी नींद भी हराम हो जाती है। जब वो गरीब था तभी अच्छा खर्राटे मार के सोता था, लेकिन पैसा आने पर उसको नींद की गोली खाने पर भी नींद नहीं आती। दिस ऑल फैक्ट्स, आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, इतना सच्चाई है इसके अंदर। और टेंशन बना रहता है, इतना यहाँ बना के रखा है, उतना यहाँ बना के रखा है, उतना वहाँ बना के रखा है, देयर इज नो पीस एट माइंड। तो हमारा एक ऐसा इल्यूजन है कि बहुत पैसा आएगा ना तो हम अच्छे हो जाएंगे एकदम, बस एक बार एक 2-3 रूम का फ्लैट आ जाएगा ना तो टेंशन दूर हो जाएगा, एक बार घर का लोन मिट जाएगा ना तो एक बार शांति हो जाएगी लाइफ में, एक बार बेटी की शादी हो जाएगी ना तो मैं टेंशन फ्री हो जाएगा। ऐसा कई हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 51, 91 भी चीज़ें हैं जो हम सोचते हैं कि वो हो जाएगा तो एकदम शांत हो जाऊंगा मैं, लेकिन ऐसा भी होता है क्या कभी? कितने लोग ऐसे जिसकी बेटी की शादी हो गई है, कितने लोग ऐसे, कितने लोगों का घर अपने नाम पे है, कितने लोगों का एक गांव भी प्रॉपर्टी भी है, उधर भी एक बंगला है, सऊदी में जितने लोग आते हैं गल्फ में सबका एक केरला में एक बंगला होता है। लाइफ का एक गोल रहता है कि अपना जमीन पर अपना बंगला बांधने का, बस सब लोग इधर आके पैसा भेजते रहते हैं और बंगला बांधते रहते हैं, लेकिन उसके बाद में वो शांति प्राप्त करते हैं क्या? फिर देखते हैं मैं सऊदी में था तो मेरा लड़का जो है ना वो नशा वाला बन गया, ब्राउन शुगर एडिक्ट बन गया, क्योंकि मैं उधर था वो केरला में था, कोई देखने को नहीं था उसको, इतना बड़ा घर बनाया, इतना प्रॉपर्टी बनाया, फायदा क्या उसका भी, वो तो ड्रग एडिक्ट बन के लूट रहा है मेरे पैसे को, गन दिखाता है मम्मी को, और गोल्ड और सिल्वर लेके जाके बेचता है, लिटरली। सो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास कितना भी धन होगा, आप कितना भोग सकते हो उसको। अभी आपको समझो, अभी हाँ मैं एग्जाम्पल क्यों बताया था, 51 टाइप्स का ब्रेकफास्ट बनता है और उसको समझो 51 सारे आइटम में उसको इंटरेस्ट है खाने को, समझो समझो वो बहुत खवैया आदमी है, बहुत खाबूगिरी करने वाला आदमी है, उसको बहुत सब में इंटरेस्ट है, फिर भी कितना खाएगा वो बताओ, कितना खाएगा, एनी आइडिया? एक पेट में कितना खाना जाएगा, 2-2.5 किलो जाएगा मैक्सिमम। और बड़ा होगा कोई खाने वाला बहुत अच्छा एकदम एक्सपर्ट होगा तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो खाएगा। और शादी में समझो 250 आइटम की शादी एक बार में गया था, 250 आइटम मैंने खाली, उसमें से कुछ आइटम टेस्ट किए तो मेरा पेट भर गया, और जो अच्छा लगा वो खाने को जब लगा कि ये तो अच्छा था बहुत, तब तक पेट भर गया था। तो उस शादी में क्या हुआ था, मन में ऐसा दो आदमी रखे थे, उन्होंने बोले आप पहला खाना खाना शुरू मत करो, आप मेरे साथ एक राउंड मारो पहले, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या है, और फिर आप दोबारा एक जाना तभी आप तय करना कि पहले वाले में आपको क्या अच्छा लगा था, फिर आप उसको लेना। ऐसे शादी में दो आदमी लोगों को रखा था, तो मुझे पहला घुमाया उन्होंने, तो मैं एक राउंड लेके आया और देखा कि यहाँ पर लेबनीज भी है, इधर महाराष्ट्रियन भी है, इधर साउथ इंडियन भी है, इधर गुजराती हांडवा भी है, सब कुछ है। तो मैं 4-5 जगह पे गया, 20 जगह पे छोड़कर 4-5 जगह गया और थोड़ा थोड़ा आइटम लिया, फिर मेरा पेट भर गया। खाने का इच्छा बहुत है मेरे को कि मुझे सब खाना है, लेकिन क्या करें, भगवान ने ज़्यादा गड्ढा नहीं बनाया था, थोड़ा सा ही गड्ढा बनाया छोटा सा, उसको भरने के लिए बहुत मेहनत लोग करते हैं, लेकिन है उतनी लिमिटेड जगह उधर। तो पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, आपके पास कितना भी धन होगा लेकिन सोना आपको 6x4 में है, एक बार एक ही जगह पर रहना है, कितना कपड़ा पहन सकते हैं बोलो आप। मेरे हॉस्टल में एक डॉक्टर थे, हॉस्टल में थे तभी पढ़ाई कर रहे थे, अभी कमाना शुरू नहीं किया था, उसके पास 125 शर्ट और 125 पैंट थे बोलो, सब पूरा ऐसा वॉल पे लगा के रखा था। बोला कभी पहनोगे उसको आप, रोज भी एक पहनोगे तो 4 महीने में एक ड्रेस रिपीट नहीं होगा आपका, तो साल में केवल 3 ही बार पहन सकते हो उसको एक ड्रेस, बाकी सारे ड्रेस पड़े रहेंगे ऐसे, उसको बदबू आएगी, फिर उसको आपने कुछ वो है ना सैनिटाइजर कुछ रखेंगे, उसका फ्रेग्रेंट आइटम रखेंगे ताकि वो ख़राब ना हो जाए, बारिश में उसको हुमस ना लग जाए, ऐसे सब करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि कितना भी हमारे पास रिसोर्स रहेगा ना, भोग आपका कैपेसिटी लिमिटेड है, आप ज़्यादा भोग नहीं ले सकते। यू कांट ईट लाइक एलिफेंट बिकॉज यू हैव मनी, हाँ यू कांट स्टे इन 10 houses एट वन टाइम बिकॉज यू हैव 10 houses, यू वॉन्ट टू स्टे ऑल हाउसेज टुगेदर बट यू कैन नॉट स्टे। लेकिन हमारे जयपदा वहाँ कैसे हैं, ब्रेकफास्ट शारजा में लेते हैं, लंच अबूधाबी में लेते हैं, फिर इंडिया में डिनर लेते हैं, ऐसे प्रचार करते हो। तो साधु होने पर भी उनका वो ऑपुलेंस है जो राजा कभी नहीं है, क्योंकि राजा पर भी इतने लोग प्रेम नहीं करते जितने महाराज पर प्रेम करते हैं, है कि नहीं? ये रियल ऑपुलेंस है, ये जिसका वर्णन यहाँ पर कुंती देवी कर रही ना, वो ऑपुलेंस नहीं है। कुंती देवी ना बहुत बुद्धिमान औरत है, इसलिए उसका वर्ड्स जो है ना वो भागवत में आया है। अगर कुंती देवी ऐसा ही कुछ एक कॉमन औरत की तरह ऐसे गॉसिप कर रही है तो भागवत में क्यों आएगा वो? लेकिन वो बहुत ही सोच समझकर साक्षात्कारी ज्ञान दे रही है आपको। साक्षात्कारी मतलब क्या, रियलाइज नॉलेज जो उसने अपने जीवन में उसको अनुभव किया है। वो कोई साधारण औरत नहीं है, वो पांडवों की माँ है, वो कुरुवंश की राजमाता है। उसने क्या क्या जीवन में नहीं किया है, कितना तपस्या, कितना कष्ट, कितना तकलीफ उठाया उसने धर्म के रास्ते पर चलने के लिए। ऐसी कुंती देवी भगवान को प्रार्थना कर रही है, कब कर रही है, मैंने कल बताया था ना, कब कर रही है वो, जब भगवान जा रहे हैं, अभी सब कुछ ठीक ठाक कर दिया, युद्ध भी समाप्त हो गया, धर्मराज को राजा बना दिया, धर्म का राज्य स्थापन कर दिया, एवरीथिंग इज ऑल राइट, उनका काम हो गया, इसलिए वो जा रहे हैं। तो कुंती देवी तब बोल रही है, क्यों जा रहे हैं आप, इतने संकट थे तब आपको पुकारा हमने संकट में, और आप आए हमारा संकट दूर किया आपने, अभी सब संकट समाप्त होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि अभी सब संकट जो था वो अभी मिट गया, सब अभी सब कुछ अच्छा हो गया, बच्चे राजा हो गए, धर्मशील राजा हो गए, धर्म का राज्य होगा, सब कुछ अच्छा होगा, और अभी आप जा रहे हो तो ये डेंजरस पोजिशन है। क्यों? अभी जब ऐश्वर्य आएगा ना तो हो सकता है हम आपको भूल जाएंगे, हो सकता है, इट इज पॉसिबल। जब तक संकट था तो गारंटी था कि हम आपको नहीं भूलेंगे, क्योंकि जब भी तकलीफ आएगा तो आपको पुकारेंगे और आप भाग के आएंगे। आप आए हो, कई बार आए हो, अभी भी आते हो, लेकिन संकट खत्म हो जाएगा तो हम आपको पुकारना भूल जाएंगे, और बहुत ऐश्वर्य आएगा तो इसमें इतना चूर हो जाएंगे कि भूल जाएंगे आपको। कैसे? जब वाली ने मार मार कर सुग्रीव को भगा दिया था, इतना पीटा था, तो वो जाके छुप गया था मतंग मुनि के पर्वत के ऊपर, ऋषिमुख पर्वत पे छुप गया था वो, और इतना असहाय था, उधर भी कांपता था वो, वाली का आवाज़ सुनेगा तो कांपता था कि आ गया मारने के लिए, मुझे पीटने के लिए, क्योंकि तो खाली पीट कर लेना है उसको और कुछ करना नहीं है। वाली आया तो खाली हाँ हरी बोल मारो मुझे, कुछ नहीं कर सकता, इतना हेल्पलेस था वो। तो प्रभु रामचंद्र ने उसको सहारा दिया, और फिर चतुर्मास आया तो प्रभु ने कहा कि अभी 4 महीना तो मैं कुछ करूँगा नहीं, तो 4 महीने विश्राम है। तो उसके पहले क्या किया, वाली को भगवान ने मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया और बोला अभी 4 महीने रेस्ट है। तो वो सब भूल गया, जब राजा बन गया, पोजीशन मिल गया, उसको पावर मिल गया, अपनी खोई हुई पत्नी वापस मिल गई, अधिकार मिल गया, सैन्य मिल गया, भोग मिले, सब कुछ, तो भूल गया वो। तो भगवान को जाके धमकी देना पड़ेगा उसको, दिया लक्ष्मण को भेजा, बोला जाओ को धमकी दे दो। तो लक्ष्मण ने ऐसा धमकी दे दिया कि एकदम हिल गया पूरा वो। तो हनुमान ने जाके शांत किया, बोला अरे सुग्रीव तू पागल हो गया क्या, तेरे संकट से भगवान ने आपको मुक्त कर दिया था, और आपने वादा किया था कि आप ऐसा करोगे तो मैं ऐसा करूंगा, आपकी पत्नी को ढूंढने के लिए सहायता करूंगा, तो भूल ही गया पूरा। ऐसा होता है, सुग्रीव कोई नालायक व्यक्ति नहीं था, अच्छा व्यक्ति था वो, लेकिन धन दौलत पैसा अधिकार पावर ये चीजें ही ऐसी होती है, वो अच्छे से अच्छे आदमी को भी नालायक बना देती है, क्या करेंगे, आदमी का बुराई नहीं उसके अंदर, वो जिन चीजों को अपनाता है ना वो चीज उसका दिमाग खराब कर देती पूरा। सुग्रीव का एकदम वाइल्ड एग्जाम्पल है, राइट एग्जाम्पल है सबके सामने एकदम। लक्ष्मण को जाकर इतना क्रोध दिखाना पड़ा तभी वो डर गए वो, और तारा को आगे भेज दिया, उसके पीछे से आया वो ताकि औरत पर वो हमला नहीं करेगा। इतने होश उड़ गए थे उसके केवल भोग लेने से, खोया हुआ वैभव जब वापस प्राप्त हो गया तो भूल गया सब कुछ। इसलिए हमने बार बार कहते हैं कि सुख से दुख अच्छा, क्योंकि दुख में हम भगवान को याद करते रहते हैं और सुख में हम अधिकतर उनको भूल जाते हैं। बचपन में बहुत भक्त था आदमी, गरीब था तभी इतना भगवान शंकर के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में हमेशा सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार हर हफ्ते में हर दिन में जो भी भगवान बैठे हुए हैं उसके लिए वहाँ जाके मत्था टेक आता था। जब धनवान हो गया थोड़ा टाइम ही नहीं मिलता है उसको धन कमाने में, तो सबको भूल गया वो, और अभी ऑफिस में बैठ कर डोनेशन भेजता है, उधर इधर भेजो उधर भेजो उधर भेजो, खुद जाने को टाइम नहीं उसको। तो ये प्रगति नहीं बोलते इसको। हाँ, जब धन दौलत आती है ऐश्वर्य आता है तो आदमी सब भूल जाता है। तो कुंती देवी बता रही है जिन चीजों पर हम सब लोगों को गर्व है वही चीजें हमारे कल्याण के लिए बाधा कारक हैं। समझो अभी हमारे बीच में समझो इस देश के कोई मंत्री आके बैठे होते तो आप लोग मुझे कम देखते उसको ज्यादा देखते। मैं बैठ के बोल रहा हूँ इधर कथा कर रहा हूँ, लेकिन आप सबका ध्यान उस पर रहता कि वो क्या कर रहे हैं, वो किसको देख रहे हैं, वो सुन रहा है कि नहीं सुन रहे हैं, वो कैसा दिख रहा है, वो कैसा बैठ रहा है, वो क्या कर रहे हैं, आपका सारा माइंड उस पे ही रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति उस अवस्था में है जिसको लोग बहुत सम्मान करते हैं, बहुत उसका धन दौलत है, वो व्यक्ति ना सहजता से भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए कुंती देवी क्या बोलती है, त्वाम अकिंचन गोचरम। अकिंचन का मतलब गरीब नहीं है, अकिंचन एक बहुत अच्छा शब्द है। अकिंचन का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम कफल्लक गरीब भिखारी होना चाहिए, वो उसकी ग्रॉस व्याख्या हो गई, स्थूल व्याख्या। अकिंचन की रियल व्याख्या वो है उसके पास धन सब कुछ बहुत है उसके पास, लेकिन वो धन से आसक्त नहीं है, धन को वो अपना नहीं समझता है, धन के पीछे भागता नहीं है, और धन से मिलने वाला भोग के पीछे वो आसक्त नहीं है। वो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम नहीं है, क्योंकि जो भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त होते हैं उनकी बुद्धि माया छीन लेती है, फिर वो पागल जैसा व्यवहार करने लगते हैं। देखा है ना आपने, पैसा आने पर लोग कैसा बदलते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं, माँ बाप को भी देखते नहीं, बच्चों को भी संभालते नहीं, मद में रहते, मस्ती में। तो ये जो कुल की बात करिए ना, कुल की बात, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग ब्राह्मण हैं, है ना, वो गुजराती ब्राह्मण भी होते हैं, साउथ इंडियन भी होते हैं, केरला में भी होते हैं, मद्रास में भी होते हैं, पंजाब में होते हैं, कश्मीर में होते हैं, यूपी में होते हैं, बिहार में होते हैं, सब जगह ब्राह्मण होते हैं। वो करते कुछ नहीं है लेकिन हम ब्राह्मण हैं, इसी का उनको गर्व होता है। हाँ, हमारे कास्ट में अभी हमारे वाइफ की भी कास्ट जो है ना, वो भी महाराष्ट्र ब्राह्मण कास्ट है। हमारे बचपन में उनके सामने एक बिल्डिंग था पूरा, कितने 46 फ्लैट थे उसके अंदर, हाई क्लास, हाईएस्ट क्लास ब्राह्मण का सब घर थे उसके अंदर। वो बिल्डिंग में और कोई एंट्री करता ही नहीं था, ओनली ब्राह्मण, नाम ही था ब्राह्मण चाल। लेकिन हर एक आदमी, कोई तम्बाकू खाता है, कोई सिगरेट पीता है, कोई मछली खाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई मंत्र जपता नहीं है, जनेऊ पहन के रखा है, कोई गायत्री करता नहीं, संध्या नहीं करता है, कुछ नहीं करते। एक उसमें से भटजी था, मतलब पुरोहित एक परिवार था, वो खाली पुरोहित का कारण जिस दिन करता था ना उसी दिन मांस नहीं खाता था, बाकी सब दिन खाता था। और नाम के लिए क्या है, हम लोग एकदम बड़े ब्राह्मण हैं, महाराष्ट्र के सबसे अच्छे हाईएस्ट कुल के ब्राह्मण हैं। अभी आप ब्रज में जाओगे ना, वृंदावन में जाओगे, तो हर मंदिर में आप हम लोगों से मिलेंगे जो आपको पहले बोलेंगे हम यहाँ के ब्राह्मण हैं, हमको दिए बिना आपको जाना नहीं, हमको नहीं देंगे आप वृंदावन में आके, ब्रजवासी ब्राह्मण को दान नहीं देंगे, अरे कैसा आदमी है तू, कर्म फुटे तेरे से, गाली देंगे आपको। करते कुछ नहीं है, भजन भी नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते, खाली जन्म ब्राह्मण के घर में हो गया इसलिए पैसे मांगते रहते हैं, केवल कुल का अभिमान है बस और कुछ नहीं। कुल के लिए कुल उस तरह का है इसलिए करते कुछ नहीं है, वो कुल के अनुकूल भजन कर रहे होंगे भाई, पूजा करते हैं, भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, जो कोई भगवान का 1000 नाम टोड लेते हैं ठीक है, तो भी हम दंडवत कर सकते हैं उनको, लेकिन ब्राह्मण कुल का एक भी ब्राह्मण कार्य नहीं करते हैं, केवल ब्राह्मण है इसी पर गर्व करते रहते हैं। ये आजकल का सबसे दुख भरा स्थिति है। जो शुरू हुआ था मालूम है ना आपको, जब ही शमिक ऋषु के पुत्र श्रृंगी ने शाप दिया परीक्षित महाराज को, तब से ये कलियुग शुरू हो गया। एक्चुअली तब कली उसके दिमाग में पहले घुस गया और उसके शाप दिलवाया, मतलब ब्राह्मण की शक्ति का दुरुपयोग किया गया, मिस यूज ऑफ ब्राह्मणिकल पावर फर्स्ट इंस्टेंस। पिताजी ने बहुत डांटा उसको बाद में, लेकिन शाप दे चुका था वो, और तब से ब्राह्मण लोगों का जो मिस यूज है ना, मिस यूज वो चालू हो गया, अपने पोस्ट का, अपने हर चीज का धंधा करने का। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं कथा कर रहा हूँ, मुझे इतना इतना 11 लाख रुपीस डोनेशन आना चाहिए तो मैं भागवत कथा करूँगा, मेरी कथा का रेट 51 लाख है, मैं जब शादी कराता हूँ तो 1,11,000 लेता हूँ दक्षिणा के रूप में, ऐसा रेट बना के रखा है सब लोगों ने, मतलब पूरा मिसयूज है। जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर ऐसा सोचता है कि मैं भी जब विवाह करूंगा या किसी का गृह प्रवेश कराऊंगा, उपनयन कराऊंगा, तो मेरे ये रेट बना हुआ है, वो आदमी केवल वैसा करने से नरक में जाता है, ऐसा शास्त्र में लिखा है। When he starts charging as per his understanding, he goes to only hell. There is no other place he can go. फिर भी उनको आगे जाकर नरक जाने का डर नहीं है, लेकिन पैसा लेना है लोगों से, ये अच्छे कुल का परिणाम है। तो हम में से लोग क्या सोचते हैं, ब्राह्मण हूं ना मैं, बस और क्या चाहिए लाइफ में, मैं इतना महान आदमी हूं, मेरा कुल इतना कुल महान है मेरा, उसमें लगे रहते हैं, और उसके वजह से, उस झूठे गर्व की वजह से भक्ति नहीं कर सकते हो, वो मोह में रहते हैं हमेशा कि मैं बड़ा आदमी हूं बहुत, और अपने कुल का ही गौरव करते हैं, मेरे कुल में कौन कौन ऋषि हुए हैं, उन्होंने क्या क्या किया है, इसका ही बाण बखान करते रहते हैं, और उस चीज पर पैसा कमाने का कोशिश करते रहते हैं। दे वॉन्ट टू कैपिटलाइज ऑन देयर बर्थ जस्ट टू मेक मनी। और इतने ऐसे लोग हैं दुनिया में, सुंदरता की बात कर रहा हूं, हाँ, उनके आंखों का भी इंश्योरेंस है, उनके नाक का भी इंश्योरेंस है, उनके बाल का इंश्योरेंस है, उनके स्किन का इंश्योरेंस है, उसके शरीर के हर पार्ट का 52-57 इंश्योरेंस बना के रखे हैं, वो भी करोड़ ऑफ रुपीज़ के इंश्योरेंस बना के रखे हैं। अगर कुछ गिर गया और नाक में चोट आ गई तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी लैक्स ऑफ रुपीज़। अगर शूटिंग करते हुए कुछ कट हो गया तो गाल का इंश्योरेंस के ऊपर से आपको करोड़ रुपया पेमेंट मिलेगा उसका। इतना लोगों को सौंदर्य के ऊपर भी आजकल पैसा लगा के रखते हैं और लोग लगाते हैं उनके सौंदर्य पैसा। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिकेटर हो तो आपके ऊपर लोग पैसा लगाते हैं IPL में और आपको खरीदते हैं 20 करोड़ में 25 करोड़ में, आप उनके लिए खेलते हो, आपका स्किल है उसके लिए आपको पैसा देते हो। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज गोइंग ऑन टूडे। हर चीज जो भी आपके पास है उसके लिए पैसा बनाने का, बस जस्ट टू मेक मनी। वॉट एवर यू हैव इज सेलेबल यू सेल। तो लोग अपने जमीन भी बेच देते हैं, अपने उसूल आदर्श भी बेच देते हैं, अपने आप को भी बेच देते हैं, पैसे के लिए क्या नहीं करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी, एनीथिंग इन द वर्ल्ड वी कैन डू। दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज टूडे। तो कुंती देवी बता रही है कि ये पैसा, ये सुंदरता शरीर की, हाँ, और विद्या और कुल किस घर जन्म लिया है, ये इतनी भयंकर चीजें हैं कि ये आदमी गटर से आदमी को ऊपर उठा ही सकती नहीं, केवल अधिक 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 गटर के अंदर घुसा देती है आदमी को। और गटर का मतलब क्या होता है? आसक्ति और बंधन, अटैचमेंट एंड बॉन्डेज। बॉन्डेज से क्या होता है? बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम, बार बार आना है उसी इल्यूजन में, बार बार आना है, वापस वापस जन्म लेना है माता के गर्भ में, दोबारा जन्म होना है, मृत्यु होना है, बीमार होना है, बुढ़ापा आना है, रो रो के मरना है, फिर दोबारा आना है। लेकिन जब तक अच्छे कुल का, धन दौलत का, विद्या का और सुंदरता का गर्व आदमी को नष्ट नहीं होता है, तब तक ये चक्र जो है वो भी नष्ट होने वाला नहीं है। इसलिए कुंती बोल रही है कि भगवान आपको तो बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं, मैं जानती हूँ आप बड़े दयालु हैं, आपको प्राप्त करना बहुत आसान है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए आसान है जिनको ना कुल का गर्व है, ना धन का गर्व है, ना विद्या का गर्व है, ना शरीर का सुंदरता का गर्व है, और वो सच रूप में अकिंचन है, जिनको दुनिया के किसी भी चीज़ पर गर्व नहीं है, होने पर भी गर्व नहीं है, वो नम्र रहते हैं, उसको अकिंचन बोलते हैं। पांडव लोग अकिंचन थे, विश्व का राजा होने पर भी अकिंचन थे, दैट इज अ रियल मीनिंग ऑफ अकिंचन। इतना सब होने पर भी पांडवों को अपने किसी चीज में आसक्ति नहीं थी उनको, उसका प्रूफ क्या था बोलो? जब जंगल में रहे, नंगे पैर भटकते रहे, तभी भगवान को याद करते थे, वो कभी भूले नहीं भगवान को। जब राजा बने तभी भगवान को भूले नहीं, और राजा बनकर भगवान को भूले, उसका प्रूफ क्या है? जिस दिन भगवान चले गए, अंतर्धान हो गए, अपने धाम में चले गए, उसी क्षण उन्होंने राज्य छोड़ दिया और उत्तर की दिशा में चले गए। उनको लगा दुनिया ही पूरी वाइड हो गई, पूरी जीरो हो गई दुनिया, उनकी दुनिया केवल भगवान से बनी हुई थी। जब तक भगवान साथ में थे उनका ऐश्वर्य, उनको ही पता था कि क्या ऐश्वर्य था उनका। और वही भगवान जब चले गए तो अर्जुन जब लौट के आए द्वारका से ना, एकदम निस्तेज होकर आए। धर्मराज उनको पूछ रहे, तो इतना निस्तेज को दिख रहा है, तूने किसी गरीब को दान नहीं दिया क्या? मांगने के बाद में तूने किसी जरूरतमंद को मदद नहीं किया क्या? ऐसे कई कारण बताए जिसकी वजह से आदमी निस्तेज हो सकता है। बोला, इसमें से मैंने कुछ भी गलत काम नहीं किया है। तो क्या हुआ, क्या बताओ, इतना निस्तेज क्यों लग रहे हो? बोले, हमारे प्राण प्रिय हृदयेश्वर श्री कृष्ण भगवान अभी अपने धाम में चले गए हैं, तो अभी तक तो केवल अर्जुन निस्तेज थे, ये सुनकर सब निस्तेज हो गए, उधर के उधर ही छोड़ दिया सब कुछ उन्होंने। अभी आप क्या बोलेंगे? ठीक है ना, हमारा भक्ति भगवान का हमने किया इसलिए राज्य मिला है, अभी राज्य थोड़ा भोगना चाहिए ना, अभी इतना साल तकलीफ उठाया, अभी थोड़ा दिन चलो कम से कम एंजॉयमेंट करना चाहिए ना। उनको तभी एंजॉयमेंट में इंटरेस्ट था ना, अभी इंटरेस्ट है उनको, उनको इंटरेस्ट केवल भगवान में था। इतनी बड़ी बात है, मैं जितना बार पढ़ता हूँ ना मैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान पर उनका केवल भगवान पर ही प्रेम था, इसका ये प्रूफ है कि उन्होंने तुरंत सब कुछ छोड़ दिया। अरे आगे होने वाला जो था ना राजा परीक्षित, वो तो इतना सा बालक था अभी, उसी को गद्दी पे बिठा दिया और ब्राह्मणों को बोला, देखो ये बालक है, इसको हमने राज्याभिषेक कर दिया है, ये आगे का राजा होने वाला है, लेकिन जब तक ये बड़ा नहीं होता है आप लोगों को राज्य चलाना है, हम जा रहे हैं। इतने वो ऐसे भगवान के बिना दुखी हो गए थे कि और विचार करने की भी स्थिति में नहीं थे वो, क्या राज्य करेंगे वो, क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन क्या करेंगे वो, चले गए सीधा, छोड़ के ही चले गए। इतना बड़ा ऐश्वर्य को छोड़ सकता है क्या, बोलो आप? पूरे विश्व का राज्य था उनका, वो भी इतनी मेहनत के बाद में, इतना युद्ध करने के बाद में, इतना कष्ट से, इतना पॉलिटिक्स, इतना तकलीफ उठा के उसके बाद में प्राप्त हुआ था, वो भी ऐसा ही छोड़ दिया। ऐसे जैसे हम रात को कपड़े बदल देना, ऐसे बदल के छोड़ के चले गए वो। वो रियल अकिंचन है। और ऐसे लोगों को वो कुंती देवी कहती है कि भगवान बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। कितनी बड़ी बात बताई उन्होंने, जो हम सोच रहे हैं उसकी पूरी उल्टी बात है ये। हम क्या सोचते हैं कि ये सब होने के बाद में बहुत अच्छा होता है, और कुछ लोग सोचते हैं अरे गरीब हूँ भैया, मैं बहुत गरीब हूँ, आप लोग धनवान हैं, आप भक्ति भक्ति कर सकते हैं, हम तो गरीब आदमी कैसे भक्ति करेंगे। कितने लोग मिलते हैं, अरे भाव साहब आप तो डॉक्टर हो, आप तो अच्छे धनी आदमी हो, पढ़े लिखे आदमी हो, हमारे पास तो खाने को भी अन्न नहीं है, हम कैसे भक्ति करेंगे, आपके पास सब कुछ है इसलिए भक्ति कर सकते हैं। लेकिन कुंती देवी तो उल्टा बता रही है, ये सब होने पर भक्ति नहीं कर सकते, ऐसा बता रही हो, और वो कह रहा है कि मैं तो गरीब हूँ इसलिए भक्ति नहीं कर सकता हूँ। अरे हमारे सुदामा जी थे ना, ऐसे भूख से कांपते थे बिकॉज ऑफ लो शुगर लेवल्स, हाइपोग्लाइसीमिया, बिकॉज ऑफ हंगर इज टू शेक लाइक दिस। तभी भी कभी भगवान से जाके उसने बोला नहीं कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं गरीब क्यों हो सकता हूँ, वाई शुड आई बी पुअर, आई एम योर फ्रेंड, कभी भी नहीं बोला। पत्नी ने एक बार बहुत जिद किया कि तुम जाओ जाओ भगवान के पास जाओ, तुम्हारा भगवान तुम्हारा मित्र है, जाओ उसके पास। ये गया बेचारा, लेकिन उसके बाद जो कुछ मांगा नहीं उसने, उसको दिल ही नहीं हुआ मांगने का, बोलो। और एक कारण था क्यों नहीं मांगा, अरे भगवान को मिलने के बाद में इतना खुश था वो, इतना खुश था कि उसको लगा कि क्या मांगने का इनसे, इनका संग मिल रहा है वही सबसे बड़ी वेल्थ है, मुझे गले मिल रहे हैं ये, हाँ मुझको सिंहासन में बिठाया, मेरे पैर धोए, पीतांबर से पैर पोंछे, वो भाग्यलक्ष्मियों की भाग्यलक्ष्मी रुक्मिणी देवी मुझे पंखा कर रही है। अभी क्या बोलो, सर वो सब ठीक हो गया ना, आपके पाँव वाँव धोखे हो गया, अभी कुछ दे दो मेरे को जाना है, पैसा नहीं है मेरे पास, दक्षिणा कितनी दोगे, ऐसा बोलने का बिल्कुल एक कण का भी मूड नहीं है उसका। इमेजिन कैसा रहेगा सुदामा, वो जिसके पेट में खाने को अन्न नहीं है, जो उधार से पोहा लेकर गया था, उसके घर में कुछ था ही नहीं, तो वो बोला भगवान के पास जा रहा हूँ, दोस्त के पास जा रहा हूँ, तो कुछ लेके जाना चाहिए, तो उधार लिया पोहा उसने, और उधार का पोहा लेके वो भी सड़ गया पोहा। कितना प्रेम रहेगा भगवान के ऊपर। ऐसे कहते हैं कि भगवान भाग के आए उसको मिलने के लिए, द्वारपाल ने रोका उसको, तो उसने आवाज दिया तो भगवान ना दरबार छोड़ के भाग के आए, और वो जो पहरेदार ने उसको रोका था उसके सामने उसको गले लगाया ऐसे, तो पहरेदार एकदम दंग रहेगा, बाप रे द्वारकाधीश भगवान, जिसको इतना फटीजर आदमी, कपड़े फटे हुए, उसके धूल से लदा पदा हुआ आदमी है, उसको द्वारकाधीश भगवान गले मिल रहे हैं, कौन है ये आदमी, कहाँ से आया है ये आदमी, कौन हो सकता है ये, ऐसा आश्चर्य हो गया सबको। और गले मिलते मिलते ऐसे ही करते 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 चल के दरबार में चले गए। फिर दरबार के लोग एकदम हैरान हो गए, अरे एकदम फटा हुआ, जिसके कपड़े में होल ज्यादा कपड़ा कम है, वो आदमी को भगवान ने द्वार अपना सिंहासन पे बिठाया, अपने पत्नी से पंखा करवाया, बोलो। सब मंत्रीगण भी हैरान हो गए वो। और इतना होने के बाद भी उसने भगवान को एक रुपये का मांग नहीं किया, और जाते वक्त भी ऐसा खुशी से हवा में उड़ते उड़ते गया वो कि मैंने भगवान से मुलाकात किया, आज मेरे दोस्त से मिला मैं, आज मेरे दोस्त से मिला, कितनी मीठी मीठी बातें हुई, बचपन की बातें हुई, कितना प्यार से मुझे उन्होंने देखा, कितना प्यार से गले लगाया, और जो भूख थी वो भी मिट गई उसकी। और जब घर पहुंचा तो बोला कि इतने बड़े बड़े महल कहाँ से आ गए, शायद रास्ता गलत हो गया, अगर मूड में आ गया ना प्रेम से एकदम, शायद रॉन्ग रास्ते पे आ गया। उतने में एक आदमी भाग के आया, आइए सुदामा महाराज जी, आइए आइए, घर में आपको स्वागत है आपका। तो उसके पीछे उसकी पत्नी, उसे गहने पहन के एकदम पूरा, पर सुशीला क्या हो गया तुम्हें, बोले आपके मित्र ने सब कमाल कर दिया, तो इधर कहाँ जा रही हो, तो बड़ा महल है ये, बोला अपना घर है ये, दिस इज आवर हाउस, तो झोपड़ी किधर गई, वो है पीछे उसके। लेकिन सुदामा का वर्णन ऐसा आता है, आगे की बात सुनना, उसका वर्णन ऐसे आता है कि सुदामा जी वो महल में भी जैसे पहले झोपड़ी में रहते थे वैसे ही रहे वो, अटैच नहीं हुए। अरे वाह क्या मार्बल का फर्नीचर है, हस्तिदंत का फर्नीचर है, सोने के नल लगे हुए हैं, क्या हजारों दासियां हैं, गोदाम भरे खाने के, अलंकार है सब, दासियां भी अलंकार पहने हुए हैं, पत्नी के अलंकार देखे तो हैरान हो गए वो, लेकिन कभी आसक्त नहीं हुए वो। दिस इज रियल वेल्थ। हाँ, जो दुनिया के वेल्थ में नहीं फंसता है वो रियल वेल्दी होता है, क्योंकि उसको रियल वेल्थ क्या है पता है। रियल वेल्थ वही है जो हमसे कभी दूर नहीं जाती, जो शरीर को मरने के साथ में हमको छोड़ के चली जाती नहीं है। ये सारी वेल्थ जिस पर हम लोग इतना गर्व करते हैं ना, बड़े धनी है, इतना बैंक बैलेंस है, इतना हाथ में अंगूठी पहन के रखा है, इतना हीरे जवाहरात के ऑर्नामेंट्स घर पे रखे हुए हैं, घर में सोने के नल लगे हुए हैं बेसिन में, हाँ है ऐसे लोग, हाँ आजकल भी दुनिया में है, अभी भी दुनिया में है, जिनके घर पे सोने के प्योर गोल्ड 24 कैरेट के नल बने हुए हैं। इमेजिन, वो दौलत आप जैसे ही बुढ़े हो जाओगे वो छोड़ के जाएगी आपको, और मरोगे तो भी आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। वो रियल वेल्थ नहीं है। रियल वेल्थ वो है जो हमेशा आपके साथ रहती है और कभी भी आपको जन्म जन्मांतर भी आपको छोड़ के जाती नहीं। वो रियल वेल्थ है भगवान की भक्ति। इसलिए आप में से कोई ब्राह्मण है, आप में से कोई धनवान है, आप में से कोई सुंदर है, आप में से कोई बहुत एजुकेटेड है, उसका बिल्कुल भी गर्व मत करना कभी भी, क्योंकि वो गर्व आपको भगवान के पास पहुंचने नहीं देगा। हमेशा भगवान आपके बीच में खड़ा रहेगा। ही विल बी ऑलवेज इन बिटवीन यू एंड गॉड। कुंती देवी विनती कर रही है, यहाँ पर हमको बता रही है कि इन मिथ्या चीजों पर, इन झूठ की चीजों पर, इस भूल भुलैया पर कभी गर्व मत करना, ये जानते हुए कि ये सब छूटने वाला वेल्थ है। हाँ, आप कितना भी करोड़ों का इंश्योरेंस करो, गाल का करो, कान का करो, आंखों का करो, एक दिन आप बुढ़े होकर मरने वाले हैं और आपका इंश्योरेंस का पैसा करोड़ों रुपए आपके बच्चों को मिलेगा, लेकिन आपको मरना जरूर है 100%। बालों के लिए कितना भी करोड़ का इंश्योरेंस बना दो आप, एक दिन सफ़ेद होने वाले हैं, एक दिन वो गलने वाले हैं, एक दिन खराब होने वाले हैं। हमारे बचपन में एक हीरोइन थी वर्ल्ड की, मैरिलिन मनरो, कितने लोगों ने नाम सुना है उसका, अभी खाली वो ओल्ड लोगों को मालूम है, मैरिलिन मनरो। हाँ, वो फिल्म स्टार थी, वो इतनी खूबसूरत थी कि दुनिया के जितने हैं ना कंट्रीज, उसके किंग्स और प्राइम मिनिस्टर्स उसके पीछे थे। ऐसी साधारण औरत नहीं थी वो कि भाई गली के लोग उसके पीछे हैं, ठीक है, वर्ल्ड के जितने किंग्स थे ना, जितने भी अनमैरिड थे, वो सब उसके पीछे थे शादी करने के लिए। इतनी सुंदर थी वो, उसके फोटो भी देखेंगे ना आप तो हैरान हो जाएंगे। वो हमारी जो मधुबाला थी तो उसके सामने कुछ भी नहीं है, वो इतनी सुंदर थी, उसके हर एक अंग में इतना सौंदर्य था। लेकिन जब वो 40 इयर्स की हो गई ना, अब नेचुरली अगर इतना आदमी ब्यूटीफुल होगा तो वो अटैच भी होगा ना उससे, वो अपने ब्यूटी से इतनी अटैचमेंट थी उसको, इतनी अटैचमेंट थी कि जब 40 इयर्स की हो गई तो उसके चेहरे पे एक वो आ गए झर्री, क्या कहते हैं उसको, रिंकल। तो उसको वो सहन नहीं हुआ कि अरे मेरे भी चेहरे पे रिंकल आ गया, तो बहुत सारा मेकअप वगैरह किया, उसके बावजूद भी दूसरी आई, फिर तीसरी आई, फिर 45 की हो गई तो बहुत सारी आ गई, तो उसने पब्लिक प्रोग्राम करना बंद कर दिया। शी कुड नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई कैन बिकम ओल्ड एंड माई ब्यूटी विल स्टार्ट विदरिंग अवे, ये बात ही उसको सहन नहीं हुई, वो सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी कि मैं भी बुढ़ी हो सकती हूँ और मेरा भी सौंदर्य धीरे धीरे नष्ट हो सकता है। शी कुड नॉट एक्सेप्ट द रियलिटी ऑफ लाइफ। और धन भी बहुत था उसके पास, बहुत लोग उसके पीछे थे, सब कुछ था, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया, अपने घर में ही लॉक कर लिया। और नेचुरली जब समय आगे गुजरता है तो उसको बुढ़ा तो होना ही है, तो वो अकेले कमरे में बंद रहने की वजह से एक दिन साइकेट्रिक पागल हो गई वो, शी बिकेम मैड एक्चुअली एंड शी कमिटेड सुइसाइड आफ्टर सम टाइम। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाए कि मैं बुढ़ी हो सकती हूँ, और बुढ़ी हो रही तो क्यों हो रही हूँ, क्या करना चाहिए मुझे, मैं बुढ़ा नहीं होना है, मुझे बुढ़ा नहीं होना है, पागल हो गई और इधर आत्महत्या कर लिया उसने। तो वो सौंदर्य उसका मित्र था कि शत्रु था, बताइए आप, इज दैट ब्यूटी हर फ्रेंड और एनिमी? 100% एनिमी, बिकॉज उसका जीवन बर्बाद किया उसने, सब कुछ होते हुए। एक सच्चाई को अगर स्वीकार कर लेती ये शरीर नश्वर है, ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर सुंदर जरूर है लेकिन एक दिन मरने वाला है, बीमार होने वाला है और बुढ़ा भी होने वाला है और चेहरे पे झर्रे भी आने वाले हैं, ये अगर एक्सेप्ट कर लेती तो मज़े की ज़िंदगी जीती एंड तक। लोग उसके पैर छूते आके, ये बहुत बड़ी हीरोइन थी पुराने ज़माने में, ऐसे जीती रहती वो। लेकिन ये जो बेसिक सत्य है ना हमारा भगवद्गीता में, आई एम नॉट दिस बॉडी, अहम ब्रह्मास्मि, ये रियल वेल्थ है। अगर आपको ये पता है तो आप जीवन के किसी भी अवस्था में जी सकते हो, इज इट नॉट ट्रू? कितना भी अगर पांडव लोग कैसे जी पाए, अगर वो पांडव मैं राजपुत्र हूँ इसी में रहते तो कब के आत्महत्या कर चुके होते, कैसे जंगल में रहेंगे हम, राजकुमार होते हुए जंगल के कंदमूल कैसे खाएंगे, नंगे पैर कैसे चलेंगे पत्थर में, और वो भी हर 3 दिन में पोजीशन चेंज करना है आपको, नदी किनारा है अच्छा फल फूल का बगीचा है तो वहीं पर परमानेंट रहना नहीं है जंगल में, वो भी चेंज करना पड़ता है, वो भी रूल है उसका। तो ये सोचकर ही वो आत्महत्या कर लेते कि हमको तो ये मुमकिन ही नहीं है। लेकिन केवल जिए नहीं, गर्व से और प्रेम से जिए, भगवान की याद करते हुए जिए। कहाँ कहाँ भगवान का मिला मुलाकात हुआ उनका, हर जगह पे जन कल्याण करते हुए जिए, फिर लौट के आए, फिर नेगोशिएट किया, फिर युद्ध किया और सब राज्य प्राप्त किया, और फिर भी भगवान चले गए, चोरन छोड़ के भी चले गए वो, बिकॉज देवर डिवोटीज, देवर महात्माज। महात्मा का मतलब क्या है? महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृतिम आश्रितः, भगवान की दैवी प्रकृति का जिन्होंने आश्रय लिया है उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा ये नहीं है हमारे पॉलिटिशियन महात्मा गांधी, महात्मा फुले, महात्मा वो, महात्मा ये, वो महात्मा लोगों ने बनाया हुआ महात्मा है वो। भगवान की व्याख्या जो भगवान ने दिया है वो महात्मा वो है जो भगवान की दिव्य शक्ति का आश्रय लिया हुआ है। और भी व्याख्या महात्मा का किया है, सततम कीर्तयन्तु माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, तो दृढ़ व्रत से भगवान के ही पीछे रहते हैं हमेशा, भगवान का ही नाम लेते हैं, भगवान के लिए समर्पित रहते हैं और निश्चय पूर्वक रहते हैं, दृढ़व्रतः, वो महात्मा लोग हैं। फाइनली हमको वो देखना है जो भगवान जिसको सराहते हैं, मतलब दैट विच गॉड गिव्स वैल्यू टू, वी हैव टू अचीव दैट थिंग। हमको भगवान की नज़र में अमीर बनना है, लेकिन हम लोग सब लोग दुनिया की नज़र में अमीर बनने का कोशिश करते रहते हैं, दुनिया से रिस्पेक्ट प्राप्त करने का कोशिश करते रहते हैं। लेकिन आप जानते नहीं, आप सब लोग, कि दुनिया में जो रिस्पेक्ट मिलता है वो कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी दरु दंडवत करते हैं कभी अंडे फेंकते हैं इमीडिएटली। एक इलेक्शन में जीत गए तो हार डालते हैं, अगले में हार गए तो अंडे फेंकते हैं, ये काय का रिस्पेक्ट है? व्हाट इज द रिस्पेक्ट? आप अगर नौकरी में हो, अच्छे पद पर हो, तब तक आपको गुड मॉर्निंग सर बोलते हैं, जिस दिन आप रिटायर होते हो आपके बोर्ड मुड़ के भी देखते नहीं है, इज दैट रियल रिस्पेक्ट? नो, वो आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपके चेयर को रिस्पेक्ट कर रहे हो। आपको जब रिस्पेक्ट करेगा ना तो आप रिटायर होने के बाद भी सलाम सर और पैर छुएगा आपके, सर थैंक यू वेरी मच, दैट इज रियल रिस्पेक्ट। लेकिन ऐसा रिस्पेक्ट ये दुनिया में नहीं मिलता है, धनवान को भी नहीं मिलता है और गरीब को भी नहीं मिलता है, पढ़े लिखे को भी नहीं मिलता है और अनपढ़ को भी नहीं मिलता है, सुंदर व्यक्ति को भी नहीं मिलता है और कुरूप व्यक्ति को भी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, क्योंकि वो रियल रिस्पेक्ट इस दुनिया में है ही नहीं। लेकिन भगवान जिसको अपना मानते हैं वो रियल ग्लोरी है हमारा लाइफ में, जिसको भगवान अपना लेते हैं। इसलिए सुदामा की आज बात क्यों कर रहे हैं हम लोग, अगर वो इतना फटीचर आदमी था, इतना बेकार आदमी था, इतना गरीब आदमी था, क्या उसके बारे में बोल रहे हैं? लेकिन उसका भागवत में कथा आती है और हम भी आज उसका वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि वो रियल वेल्दी था इसलिए आज उसकी कथा हम लोग कर रहे हैं। कुंती देवी की कथा क्यों कर रहे हैं? बेचारी तो विधवा थी, जंगल में अकेली हो गई थी, 5 बच्चों को लेकर ऐसे याचक की तरह हस्तिनापुर में आई, हमको आसरा दो, 5 बच्चे को लेकर मैं विधवा हो गई हूँ, कार होंगी, ऐसा लोग कोई मूल्य देता है क्या, कोई वैल्यू देता है उनको? Anybody cares for them? क्या है तो बेकार है, कोई पैसा नहीं कुछ नहीं, 5 बच्चे लेके विधवा हो गई है, अभी कौन पूछेगा इसको, सारी वैल्यू खत्म हो जाती। लेकिन ऐसे व्यक्ति का वचन जो है ना, उस वचन के बारे में भागवत में चर्चा हो रही है, उसने जो बोला है उसकी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, प्रवचन कर रहे हैं उसके ऊपर, दैट इज रियल वेल्थ। इसलिए इन बेकार की चीजों पर कभी गर्व नहीं करना चाहिए और गरीब होने पर भी दुख नहीं करना चाहिए। गरीब हो तो क्या, दुनिया में पैसा नहीं तो क्या फर्क पड़ता है, जब तक भगवान का हृदय में वेल्थ है कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और भगवान कभी कभी ना जानबूझ के अपने भक्तों को गरीब रखते हैं। क्यों रखते हैं? वो हमारे बरसाने में आएंगे ना कैंप में, तो आपको सब लोग एकदम गरीब मिलेंगे, अनपढ़ मिलेंगे, गवार मिलेंगे और काले कलूटे कुरूप मिलेंगे। लेकिन उनका कैसा गुण है मालूम है? एक बार हम रात को बरसाना आए कैंप में राउंड लेने गए थे, एक बार नहीं हम जाते हैं हमेशा रात को, देखते हैं मरीजों कोई तकलीफ तो नहीं है, सब लोग सो रहे हैं आराम से, एक राउंड लेके आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं है। तैसे हम राउंड लेने गए थे, तब सब लाइट ऑफ करके सब मरीज लोग कंबल ओढ़ के ठंड में सो रहे थे, राधे राधे ऐसे पुकार रहे थे, पता कि लगता है कि दर्द में पुकार रहे हैं, कुछ आँख में दर्द होता होगा, ऑपरेशन किया है तो शायद पेन होता होगा। तो हम लोग जाके जहाँ से आवाज आ रही है वहाँ पर गए और वो रजाई ऐसा ओढ़ा निकाल के देखा तो आदमी एकदम गहरे नींद में सोया हुआ है, आंखों बैंडेज है एंड ही इज डीपली अस्लीप, फास्ट अस्लीप, लेकिन मुँह से राधे राधे बोल रहे हैं। हमको लगा कि दर्द के मारे पुकार रहा है, कोई दर्द वर्द नहीं, आराम से सोया है, लेकिन रात को भी भगवान का नाम पुकार रहे हैं, राधा रानी को पुकार रहे हैं। और हम लोग जब करने के समय भी सो जाते हैं और वो सोते समय भगवान को पुकारते हैं। तो ऐसे लोगों को राधा रानी हमेशा गरीब रखती है, गंवार रखती है, कुरूप शरीर में रखती है, गरीब घर में गाँव में रखती है, ताकि उनको गर्व न हो। गर्व किस पे होता है? अगर अच्छे कुल में जन्म लिया हो, बहुत पैसा हो, बहुत सुंदर हो, बहुत विद्या हो, तो गर्व होता है, और गर्व होने से भगवान हमसे दूर चले जाते हैं। तो भगवान और राजा रानी उनको अपने पास रखना चाहती है, इसलिए गर्व से फ्री रखने के लिए इन चार चीजों से दूर रखती है उनको। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज पॉवर्टी इज देयर रियल वेल्थ। जो हम अकिंचन बोल के उनको बोलते हैं, गरीब यानी कि कफल लक, कुछ पैसा नहीं उसके पास, वो अमीरी की व्याख्या है एक्चुअली। व्हाट वी कॉल एज पॉवर्टी इज अ डेफिनेशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम कृष्णा कॉन्शियस पॉइंट ऑफ व्यू। और ये हमको सीखना है हमारा रियल वेल्थ क्या है। बाकी पैसा होना गलत काम नहीं है, पैसा आप कमा सकते हो, बहुत भगवान की सेवा कर सकते हो। जब तक पांडव थे या जब तक भगवान थे, क्योंकि कुछ समय भगवान थे जब तक राजा थे, तो उन्होंने सारे वेल्थ जो है भगवान की सेवा में लगा दिया, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को कृष्णा कॉन्शियस बना दिया, ऐसा एटमॉस्फेयर बना दिया कि सब कृष्णा कॉन्शियस। तो वेल्थ होना खराब चीज नहीं है, जब तक वेल्थ अपनी सेवा में है तो वो बांध देती है हमको, बंधन में बांध के नरक में भेज देती है, कलह और झगड़ा पैदा कर देती है, दंभ पैदा कर देती है। लेकिन वो इतना दिव्य भयंकर वेल्थ जो है, वो जब भगवान की सेवा में लगा रहता है, उसका कोई गलत परिणाम आपके ऊपर नहीं होता है, ना आपको गर्व देगी वो, ना झगड़ा कराएगी, ना आपको दाम्भिक बनाएगी, ना हिपोक्रेट बनाएगी, कुछ नहीं बनाएगी वो। एज लॉन्ग एज द वेल्थ इज इन सर्विस टू द लॉर्ड, इट विल नेवर कंटेमिनेट यू। बट इफ द वेल्थ इज इन योर सर्विस सेल्फिश पर्पज, फिर इट विल कंटेमिनेट यू, इट विल डिग्रेड यू, इट विल डिस्ट्रॉय यू, इट विल फिनिश यू ऑफ। कितने लोग पैसे के लिए मर्डर भी कर देते हैं, 10,000 रुपये के लिए, 250 रुपये के लिए, 5,000 रुपये के लिए मर्डर भी कर लेते हैं। 5,000 रुपये क्या चीज़ है, लेकिन जान ले लेते हैं उसके लिए। एक कान का रिंग चाहिए इसलिए वो गला काट देते हैं और रिंग लेके जाते हैं, ऐसा ही इतना खराब है पैसा। लेकिन वही पैसा अगर भगवान की सेवा में है, संतों के आदेश के अनुसार भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, तो वो पैसा जो है वो आपको कंटेमिनेट नहीं करेगा, उल्टा भगवान के पास पहुंचा देगा आपको वही पैसा। तो पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो कहाँ लगा के रखा है आपने, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर भगवान की सेवा में लगाया है तो पैसा भी स्थिर हो जाता है, यू नो, क्योंकि वो लक्ष्मी है ना, वो लक्ष्मी अकेले आएगी तो चंचला रहती, चंचला कभी रहेगी कभी जाएगी, रहेगी कभी जाएगी, लेकिन अगर लक्ष्मी नारायण के चरणों में है तो वो स्थिर हो जाती है। तो अगर आपको रियल वेल्दी बनना है, पैसे से भी बनना है ना, तो नारायण की पूजा करो, आपके घर में लक्ष्मी आके स्थिर हो जाएगी, शी विल बिकम स्टेडी एट योर हाउस, देन यू यूज हर इन सर्विस टू कृष्णा, देन यू विल बी वेल्दी, यू विल बी हैप्पी, यू विल बी ऑपुलेंट एंड इट विल नॉट कंटेमिनेट यू ऑल्सो। जैसे भगवान ने बलि महाराज को वरदान दिया कि तुम्हारा जो सुतल राज्य होगा ना, सुतल लोक, वो इंद्र से भी अधिक ऐश्वर्य संपन्न होगा, लेकिन आपको वो ऐश्वर्य कंटेमिनेट नहीं करेगा क्योंकि आप मेरे भक्त हो। राक्षस कुल में रहोगे फिर भी राक्षसों का मति जो है ना वो आपको भ्रष्ट नहीं करेगी, और मैं स्वयं आपका दास बनकर द्वारपाल बनकर वहां खड़ा रहूंगा। दिस इज वेल्थ, व्हेन यू हैव कृष्णा दैट इज वेल्थ, रेस्ट एवरीथिंग इज ओनली फॉल्स इल्यूजन विच विल डिस्ट्रॉय यू, डिग्रेड यू एंड कंप्लीटली फिनिश यू ऑफ इन लाइफ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई क्वेश्चन है किसी का? सबसे पहले ब्राह्मण का पतन हुआ, और ब्राह्मण समाज के होते हैं लीडर। जब लीडर का पतन होता है तो सबका फिर वन बाय वन होता है। समझो आप, हम घर के समझो हेड है ना, कुटुंब प्रमुख है हम। अगर हम भ्रष्ट हो गए तो हमारी पत्नी, हमारे बच्चे सब धीरे धीरे सब भ्रष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हुई टॉप से, फिर सब लोग भ्रष्ट हो गए, फिर सब लोग शूद्र बन गए। ब्राह्मण होते हुए भी व्यवहार शूद्र का है उनका। शुरुआत ब्राह्मण से हुई, जो समाज का नेता है ना, समाज को दिशा दिखाने वाला, समाज को मार्गदर्शन करने वाला, समाज को कल्याण के रास्ते पे लेके जाने वाला जो वर्ग है, वो जब भ्रष्ट हो गया तो फिर सारा समाज भ्रष्ट हो गया। ऐसा हुआ। और कोई प्रश्न है किसी का? यस। डेफिनेशन वो आपने जो कहा ना वो सब सच है कि उन्होंने हमको इंडिपेंडेंस दिया, ब्रिटिश से मुक्त करा के अपना राज्य दिया, वो सब कुछ सही है। लेकिन महात्मा की जो व्याख्या है उसमें वो फिट नहीं होता है ना। हमको उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, हम लोग उसके वी आर नॉट इवन अनग्रेटफुल टू हिम ऑल्सो। बट इफ यू टॉक अबाउट महात्मा डेफिनेशन, देन वी हैव टू गो एज पर कृष्णस डेफिनेशन, नॉट पर आवर डेफिनेशन। अभी कल बोलेंगे वो महात्मा क्यों बोलना है उसको, भगवान बोलो ना उसको। भगवान बोलने में क्या तकलीफ है? इतना आपको उसने इंडिपेंडेंस दिया, इतना ब्रिटिश के राज्य से आपको मुक्त करा के राजा बना, राज्य आपको दिया है, अभी अपना इंडिया अपना कंट्री है, तो वाई महात्मा? कॉल हिम गॉड ना, वाई ओनली महात्मा? बट अगर भगवान बोलना है तो उसकी डेफिनेशन क्या है? अगर वो फिट होता है तो बोलो भगवान उसको। महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रितः सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़। मैं बताया आपने क्लास में, डेफिनेशन ये है कि वो भगवान के दैवी प्रकृति में शरणागत रहता है, वो पॉलिटिक्स नहीं करता है, दैट टू डर्टी पॉलिटिक्स। हाँ, विच वी सॉरी टू से, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक बात वो नहीं कर पाए जो उनको नहीं करना चाहिए था। ही सैंक्शनड इंडिया पाकिस्तान डिवीजन, हेल्पलेसली सैंक्शनड, और आज 70 ईयर्स के बाद में भी हम लोग दोनों झगड़ रहे हैं बैठ के, लाइफ हमारा बर्बाद कर रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वन डिसीजन। सो मेनी गुड थिंग्स एंड मेनी बैड थिंग्स ऑल्सो, वी आर ऑल पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑल गुड एंड बैड थिंग्स। ओके, सी वी हैव टू अंडरस्टैंड, महात्मा आदमी होता है ना, महात्मा जो महात्मा डेफिनेशन में बैठता है, हाँ यस सर, वो ही इज नॉट अ ऑर्डिनरी मॉर्टल। जब मरता है तो भगवान के पास जाता है वो, और ऑर्डिनरी मॉर्टल होता है ना जो मर्त्य, जो मृत्यु को प्राप्त करने वाला व्यक्ति होता है, भगवान का संत रूपी भक्त नहीं होता है, उसको महात्मा कहना ये महात्मा लोगों का अपराध है। जो सच्चे महात्मा हैं, नारद मुनि है, व्यास मुनि है, ये सब महात्मा लोग हैं। किसी भी व्यक्ति को बिकॉज ऑफ पॉपुलर वोट अगर हमको महात्मा बनाना है तो उन लोगों का अपमान है वो, जिन्होंने अपनी जिंदगी भगवान के चरणों में अर्पण कर ली है। व्यास मुनि ने ये श्रीमद् भागवतम को कंपाइल करके हमको दिया है। 5000 साल पहले भगवान ने व्यास जी के रूप में अवतार लिया और सारा शास्त्र लिखा पूरा, जो आज भी हम लोग पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दिस इज कल्याणकारी कार्य, जगत कल्याण कार्य वो है जो आत्मा का कल्याण कर सकता है, वो महात्मा है। वाल्मीकि पहला हंटर था, क्रूर हंटर था, क्रूएल हंटर, लेकिन नारद मुनि का ऐसा कृपा हुआ कि वो वाल्मीकि संत महात्मा सप्तऋषि में से एक बन गए वो, और रामायण लिखा उन्होंने, रामायण होने के पहले लिखा, जिसको आज भी हम लोग पढ़ के इतना प्रेरणा लेते हैं। दोज आर महात्मास, नॉट दोज हु आर वर्ल्डली लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स एंड देयर इज समथिंग गुड समथिंग बैड व्हाट एवर। लेकिन बाय पॉपुलर वोट जो महात्मा बनता है ना, उसको भी अंजाम अपने कर्मों के द्वारा वही होता है जो बाकी लोगों का होता है। आई एम नॉट अ एनिमी ऑफ महात्मा गांधी और अ फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी, आई एम टॉकिंग स्क्रिप्चर्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्क्रिप्चर्स। और हर व्यक्ति को किसी भी अगर स्टैंडर्ड का डिस्कस करना है तो स्क्रिप्चर्स को रख के करना चाहिए, मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इनको क्या लगता है, और चार लोगों का पॉपुलर वोट क्या है, उसके ऊपर सत्य नहीं बनता है कभी भी। लेकिन दुनिया का अभी आजकल कैसा माहौल है, हाँ चलो चलो गोप कुमार को भगवान बना देते हैं, उसका भी एक स्ट्रैटेजी है पूरा पोस्टर बनाने का, बड़े बड़े उनका साधु के ड्रेस में पोस्टर बनाने का, फिर 10 लोगों को पैसा देके जय जयकार करने का, भगवान गोप कुमार की जय हो, हाँ सब जगह पर ऐसा पोस्टर लगाने का, फिर कथा लगाने का उनका, फिर कथा में पेड लोगों को लेके आने का, पूरा हॉल भर देने का, और सब जगह पेपर में उसका एडवर्टाइजमेंट देने का, मीडिया में, फेसबुक पे, न्यूज़पेपर में, चैनल में, सब जगह ऐसा करके कुछ दिन फील्डिंग करेंगे तो एक दिन आएगा लोग उनको भगवान मानना शुरू कर देंगे। यही आजकल हो रहा है इंडिया में, आज के तारीख में 350 से अधिक भगवान हैं, और उसमें से हर एक आदमी बोलता है कि 349 गलत है और मैं अकेला भगवान हूं। दिस इज ऑल बाय पॉपुलर वोट एंड दे आल्सो एनिमीज ऑफ वन अनदर एंड देन दे आर फाउंड हैविंग इलिसिट सेक्स विद समबडी एंड दे आर कॉट सो कॉल्ड भगवान। ऐसा है ना, वो हमारे जैसा आदमी है वो, लेकिन आपने उसको भगवान बना दिया, लेकिन वो जो है वही है ना। वो कुत्ते ने अगर शेर का चमड़ी पहन लिया तो थोड़ी देर तो बैठेगा वो राजा सिंहासन पे बैठेगा राजा बनकर, लेकिन जैसे ही कुत्ती वहां से आएगी तो उसका सारा ढोंग खत्म हो जाएगा। ही विल बी एक्सपोज्ड, ही हैज वन द चमड़ी ऑफ टाइगर, और वो दिखा रहा है कि मैं राजा बन गया हूँ, लेकिन जैसे ही शी बिच शी डॉग कम्स इन फ्रंट ऑल हिज हिपोक्रेसी इज ओपन। ऐसा ही है वो, तो ऐसा झूठ मूठ के लोगों के पीछे हमको भागना नहीं। वी शुड नो हु इज रियल महात्मा, वी शुड नो होम टू फॉलो एंड वी शुड नो हाउ टू डू आवर वेलफेयर। बाकी जिन्होंने हमारे पर उपकार किया है, थैंक यू वेरी मच, वी आर नॉट सेइंग कि यू आर यूजलेस मैन, नो, ही हैज डन अ ग्रेट जॉब, ही डिडंट वेयर एनी क्लोथ्स बिकॉज पुअर पीपल डिडंट हैव एनी क्लोथ्स, ही वाज गोइंग अब्रॉड ऑल्सो विदाउट वेयरिंग एनी क्लोथ्स, ओनली धोती ही वाज वेयरिंग, सो वी अप्रिशिएट दैट, हिज त्याग, हिज सेक्रीफाइस वी अप्रिशिएट। बट जो सत्य है वो सत्य है ही ना, सत्य को कैसे आप मिटा सकते हो, जो फैक्ट है वो है ही। जस्ट बिकॉज ही हैज डन इंडिपेंडेंस टू यू, फैक्ट बदली नहीं होता है ना, फैक्ट रिमेन सेम, मिस्टेक इज मिस्टेक। लोगों ने बताया था उनको कि मत जाओ घर के बाहर, आज को गोली मरने वाले आप, फिर भी गए, मिस्टेक किया तो गोली लग गई, मर गए वो। उसका एग्जाम्पल प्रभुपाद देते थे हमेशा, टू एयर इज ह्यूमन, गलती करना मानव का धर्म है, मतलब करती है, क्या कहते हैं, स्वभाव है। बड़े आदमी भी गलती करते हैं और उसका परिणाम भी उनको भोगना पड़ता है, उसको माफी नहीं होती है। सो प्लीज वी हैव टू गो बाय स्क्रिप्चर्स ओनली एंड टीच पीपल ओनली बेस्ड ऑन स्क्रिप्चर्स ओनली, नो मनगढ़ंत बातें, मुझे क्या लगता है, आपको लगता है, कोई वैल्यू नहीं उसको। वैल्यू केवल उसी चीज को है जो स्क्रिप्चर में लिखा है, क्योंकि स्क्रिप्चर भगवान ने लिखा है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के द्वारा दिया गया उपदेश को ही हम शास्त्र कहते हैं और उसी पर चलते हैं। और चलना भी उसी पर चाहिए। दुनिया में कई शास्त्र हैं जो अपने अपने लिखे हुए हैं, अपने अपने इतिहास भी लोगों ने बदली कर दिया। पता है आपको, ब्रिटिश लोगों ने हिस्ट्री भी चेंज कर दिया है कम्प्लीटली। बोगस हिस्ट्री इज बीन टॉट इन द स्कूल, लोगों को भयका रहे हैं खाली। तो अभी कहा जा रहा है लोगों को, बताया जा रहा है कि कम से कम राइट हिस्ट्री लिखो पहले, ताकि लोगों को रियलिटी मालूम पड़े, व्हाट इज रियलिटी। इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस 70 साल में जो लिखा गया है वो भी मैनिपुलेटेड हिस्ट्री है पूरा, रियल हिस्ट्री छुपा हुआ है सब कुछ। इसीलिए हमको भक्त बनना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया में कोई खुशी नहीं है। एवरीथिंग इज करप्ट हियर, वॉट एवर, रिच पीपल आर करप्ट, पुअर पीपल आर करप्ट, एवरीबडी इज करप्ट, एजुकेटेड पीपल आर करप्ट, हाईली एजुकेटेड पीपल आर नाउ टेररिस्ट, यू नो दैट, हाईली एजुकेटेड हाईली टेक्निकल साइंटिस्ट आर नाउ टेररिस्ट एंड दे आर सेलिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग एटोमिक एनर्जी का नॉलेज। सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन, बिकॉज लोग कोई भी भगवान को धर्म को फॉलो नहीं करना चाहते। और जब कोई व्यक्ति भगवान को और धर्म को फॉलो नहीं करते हैं तो दे ओनली गो इन डिस्ट्रक्शन, देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर रिजल्ट ऑफ नॉट बीइंग गॉड कॉन्शियस। अगर भगवान को भूलकर आपको जीना है तो विनाश ही उसका उत्तर है, उसका अंजाम केवल विनाश है। इसलिए अगर हम दुनिया को बदल नहीं सकते हैं, कम से कम खुद को बदल सकते हैं। लेट वर्ल्ड नॉट चेंज बट आई कैन चेंज टू दैट रियलिटी, एंड इफ इन द प्रोसेस ऑफ मी बिकमिंग चेंज, इफ आई कैन चेंज 1% ऑल्सो इट इज गुड, है ना। उसकी छोटी कहानी बता के मैं आज का प्रवचन एंड करूंगा। आप बोलेंगे क्या फर्क पड़ेगा, इतना करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, 650-800 करोड़ लोग दुनिया में रहते हैं, और आप बदल गए और एक आदमी बदल गया तो क्या फर्क पड़ेगा दुनिया में, छोड़ो ना सब कुछ ये। तो इसके लिए एक उत्तर है, हाँ, समुद्र में ना, वेस्टर्न वर्ल्ड में ना वो स्टार फिश रहते हैं समुद्र के अंदर, स्टार फिश मालूम है आपको, जब भी वो लहर आते ना समुद्र के किनारे में तो स्टार फिश को भी लेके छोड़ देती है वो, और वो ऐसे तड़पते हुए मर जाते हैं। तो ऐसे ही समुद्र किनारे पे लहरें आ रही थी और हर एक लहर के बाद में कई सारे स्टार फिश 50-100 ऐसे बाहर गिर रहे थे और तड़प रहे थे। तो एक लड़का वहाँ से गुजर रहा था, तो वो क्या देखा तो उसको बहुत बुरा लगा, अरे इतने सारे स्टार फिश तड़प रहे हैं, तो वो हर एक उठा के फेंकने लगा समुद्र के अंदर। मतलब लहर आती थी और स्टार फिश आते थे तो फटाफट फटाफट उसको उठा के फेंकता था, लेकिन वो बहुत आते थे तो उतना सबको तो उठा नहीं पाता था वो। तो कितनी लहरें आई और कितने हजारों स्टार फिश जमीन पर आए और कुछ सैकड़ों, कुछ 50-60 को उसने फेंकने का प्रयास किया और कुछ वापस चले गए। तो बहुत देर से एक आदमी उसको देख रहा था, बोले क्यों टाइम पास कर रहे हो, क्या कर पाओगे आप, समुद्र हजारों स्टार फिश को जमीन पर फेंक रहे हैं और आप 10-15-25 को पानी में फेंक रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा। तो बालक ने क्या उत्तर दिया, इट मेक्स द डिफरेंस फॉर दैट स्टार फिश विच गोज इन द वाटर। सबको फर्क नहीं पड़ता रहेगा, लेकिन जिसको मैं उठा के फेंक रहा हूं उसको जरूर फर्क पड़ रहा है, ही इज लिविंग, ही इज नॉट गोइंग टू डाई। तो मे बी मेरी कैपेसिटी हजारों को बचाने की नहीं है, लेकिन जिसको मैं एक बचाऊंगा वो बच जाएगा ना वो आदमी। तो मे बी नॉट द होल वर्ल्ड आई कैन सेव, बट इफ आई कैन सेव 1% अलॉन्ग विद मी, नो प्रॉब्लम फॉर दैट पर्सन, इट मेक्स 100% डिफरेंस। इज इज नॉट ट्रू, हाँ, इसे डोंट वरी कि आप कितने लोगों को बदल सकते हो, पहले खुद को बदलो और बाकी लोगों को बदलने का कोशिश करो। बदले तो उनका कल्याण है, नहीं बदले आपका कल्याण तो हो ही गया है, डोंट वरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।